ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नवनियुक्त चार मंत्रियों ने ली पद तथा गोपनीयता की शपथ। नेकपा एमाले का 11वां महाधिवेशन कल होगा शुरू। और थाईलैंड में आम चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हुआ संसद विघटन। अब समाचार विस्तार से। नवनियुक्त चार मंत्रियों ने आज पद तथा गोपनीयता की शपथ ली है। आज राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्डेल ने नवनियुक्त भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री कुमार सिंह इंगनाम, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री राजेन्द्र सिंह भंडारी, वन तथा वातावरण मंत्री माधव चौलागाई और महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री श्रद्धा श्रेष्ठ को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री सुशीला कार्गे की सिफारिश पर आज ही राष्ट्रपति ने उन्हें नियुक्त किया था। आज के सरकार विस्तार के साथ ही मंत्रिपरिषद सदस्यों की संख्या 14 हुई है। आज ही नवनियुक्त भूमि व्यवस्था मंत्री, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री और श्रम मंत्री ने पदभार भी ग्रहण किया। नेकपा एमाले का 11वां महाधिवेशन कल शनिवार से शुरू होगा। एमाले ने आज महाधिवेशन के उद्घाटन स्थल भक्तपुर के सल्लाघारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताया कि महाधिवेशन की तैयारी अंतिम चरण में है। महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र समेत कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के लिए 10,000 से अधिक स्वयंसेवक परिचालित किए गए हैं। ये जानकारी स्वयंसेवक परिचालन समिति के संयोजक भानुभक्त ढकाल ने दी। महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र के लिए सल्लाघारी में नेपाल ट्रस्ट की लगभग 100 रोपनी यानी करीब 7.5 बीघा जमीन वाले मैदान में मंच बनाया गया है। साथ ही सभी सहभागियों को मंच का दृश्य दिखाया जा सकने के लिए अत्याधुनिक श्रव्य दृश्य यंत्रों का प्रबंध किया गया है। कल मार्गशीर्ष 27 गते शनिवार से शुरू होकर महाधिवेशन मार्गशीर्ष 29 गते को संपन्न होगा। पालपा की निस्ती गांवपालिका वार्ड नंबर 4 मित्याल च्यूरेबास में आज हुई जीप दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य 8 लोग घायल हो गए। हादसे में पालपा की निस्ती गांवपालिका वार्ड नंबर 7 की 36 वर्षीय हेम कुमारी सारू, 45 वर्षीय ओम कुमारी खामचा और अन्य एक व्यक्ति की मौत हो गई जिनकी शिनाख्त होना बाकी है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय पालपा ने दी। अरुण खुला से निस्ती होते हुए रामपुर के लिए जाती हुई फोर्स जीप सड़क से करीब 100 मीटर नीचे खाई में गिरने से यह हादसा हुआ। घायलों का इलाज मध्य बिंदु प्रादेशिक अस्पताल नवलपरासी और पुराने मेडिकल कॉलेज चितवन में हो रहा है। विभिन्न देशों में आकर्षक रोजगारी का लालच देकर 48 युवकों और युवतियों से 4,39,00,000 रूपये की ठगी के मामले में काठमांडू महानगर पालिका 27 महाबौद्ध इलाके के 51 वर्षीय मनोज कुमार सिंह के नाम से परिचित अनूप कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय की टोली ने जिला प्रहरी कार्यालय झापा के समन्वय में सिंह को झापा की मिचीनगर नगरपालिका 10 धूलाबारी से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक खुद को पूर्व राजा का भांजा बताकर लोगों से आकर्षक वैदेशिक रोजगारी का लालच देकर करोड़ों रूपये की ठगी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्डेल ने कहा कि आने वाला समय आर्थिक विकास और समृद्धि पर केन्द्रित होना चाहिए। नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात में राष्ट्रपति पोर्डेल ने कहा कि आर्थिक विकास और समृद्धि पर केन्द्रित होने के लिए राजनीतिक स्थिरता और सुशासन पहली शर्त है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी, नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि, नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी, नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी, नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। निर्वाचन आयोग ने आगामी फागुन 21 को प्रतिनिधि सभा चुनाव के अंतर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली में भाग लेने के लिए आवेदन करने वाले दलों की सूची प्रकाशित की है। आवेदन करने वाले दलों में से अंतिम रूप से स्वीकृत होने वाले दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान कर उनका क्रम निर्धारित किया गया है। ये जानकारी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के सहायक निर्वाचन अधिकारी यज्ञ प्रसाद भट्टाराय ने दी। उन्होंने बताया कि समानुपातिक प्रणाली में 93 निर्वाचन चिन्हों पर कुल 100 राजनीतिक दल भाग लेंगे। निर्वाचन आयोग ने जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक प्रणाली के तहत प्रतिशत निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित की है। प्रतिनिधि सभा चुनाव क्षेत्र 2074 द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू और मुस्लिम समूहों के लिए प्रतिशत निर्धारित किया जा रहा है। जनसंख्या के आधार पर समावेशी समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के संदर्भ में कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय के सहसचिव सुभाष कुमार भट्टराय की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय और राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय के प्रतिनिधियों वाली एक 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि हर कार्यक्रम में युवा पीढ़ी को शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय युवा परिषद द्वारा आज आयोजित सामाजिक जवाबदेही, मीडिया और युवा संवाद विषयक कार्यक्रम में मंत्री खरेल ने कहा कि पिछले भाद्र 23 और 24 के जेनजेड आंदोलन को सरकार और युवा प्रतिनिधियों के बीच समझौते में जन आंदोलन के रूप में मान्यता दी जा चुकी है, इसलिए इस आंदोलन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन ने आगामी चुनाव में प्रवासी नेपालियों के मतदान की व्यवस्था सहित अंतरजिला मतदान करने की सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की है। पार्टी की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक के निर्णयों को आज सार्वजनिक करते हुए अध्यक्ष लिंगदेन ने बताया कि राजसंस्था, राजनीतिक दल और जेनजेड के बीच नई सहमति के लिए सरकार से मांग करने का निर्णय केंद्रीय कार्यसमिति ने किया है। इसी तरह बैठक ने आगामी पूस में जनसंवाद और प्रदर्शन के कार्यक्रम आयोजित करने और रापरपा की ओर से मध्य प्रदेश सभा के सदस्य कंचन बिच्छा को सांसद पद से वापस बुलाने के निर्णय को भी मंजूरी दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल को आज संसद भंग करने की शाही इजाजत मिल गई, जिससे अगले साल के शुरुआत में आम चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। संसद भंग करने का शाही फरमान जारी होने के 45 से 60 दिन बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनाव होंगे। इस दौरान अनुतिन सीमित शक्तियों वाली एक अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर काम करेंगे और नया बजट मंजूर नहीं कर पाएंगे। अनुतिन ने गुरुवार देर रात एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैं लोगों को सत्ता वापस देना चाहता हूं। यह कदम एक मुश्किल राजनीतिक समय पर उठाया गया है, क्योंकि थाईलैंड लंबे समय से चल रहे बॉर्डर विवाद को लेकर कंबोडिया के साथ लड़ाई में फंसा हुआ है। इस हफ्ते की लड़ाई में कथित तौर पर कम से कम 24 लोग मारे गए हैं, जबकि दोनों तरफ के लाखों लोग बेघर हो गए हैं। बता दें कि अनुतिन सिर्फ 3 महीने पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने पेंटोगटार्न शिनावात्रा की जगह ली, जिन्होंने सिर्फ 1 साल काम किया था। अनुतिन ने सितंबर में मुख्य विपक्षी पार्टी पीपुल्स पार्टी के सपोर्ट में पार्लियामेंट्री वोट जीता था। बदले में उन्होंने 4 महीने के अंदर संसद भंग करने और चुनी हुई संविधान सभा से नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जनमत संग्रह कराने का वादा किया था। पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को गलत काम के आरोप में बर्खास्त किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की बेटी पेंटोगटार्न जुलाई में हथियारबंद लड़ाई से पहले कंबोडिया के सीनेट प्रेसिडेंट हुन सेन के साथ एक पॉलिटिकली सेंसिटिव फोन कॉल से जुड़े नैतिक उल्लंघन का दोषी पाई गई, जिसके कारण उन्हें निकाल दिया गया। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो विपक्ष में रहेगी और नई सरकार को माइनॉरिटी में रखेगी। प्रोग्रेसिव पॉलिसी की वकालत करने वाली ये पार्टी लंबे समय से मिलिट्री शासन के दौरान बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर इसे और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की मांग कर रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनियुक्त 4 मंत्रियों ने ली पद तथा गोपनीयता की शपथ। नेकपा एमाले का 11वां महाधिवेशन कल होगा शुरू और थाईलैंड में आम चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हुआ संसद विघटन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।